दीदी को वेव करेंगे, वेलकम। वैसे तो दीदी हम सबको मिल चुके हैं, दीदी का परिचय भी हम आप सभी को मिल चुका है। हमारे आदरणीय गीता दीदी जी, जो कि अपने तपस्वी जीवन के आधार से आज का जो विशेष विषय लेकर के हम सबके बीच में अपनी प्रेरणाएं लेकर आए हैं, याद, योग और तपस्या, हम सभी करते ही रहते हैं, लेकिन आज विशेष दीदी अपने तपस्वी जीवन के आधार से वो उन विशेष बातों पर हमें प्रकाश डालेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी,
ओम शांति। याद करना, हम मनुष्य आत्माओं का स्वभाव है। चिंतन करना, स्मृति में रहना, ये आत्मा की चैतन्यता की निशानी है। हम सदा किसी न किसी की याद में रहते ही हैं। कभी परिवार की याद, कभी मित्रों की याद, कभी कार्य की याद, अनेक प्रकार की यादों से हमारा जीवन भरा हुआ है। और जैसी याद वैसी अनुभव भी होते हैं। कोई सुख के प्रसंग को याद करते हैं तो भल अभी वो प्रसंग नहीं है, पर स्मृति मात्र से अनुभूति होती है। कोई मित्र को याद करेंगे तो हमें खुशी होती है, कोई दुख के प्रसंग को याद करेंगे तो दुखी हो जाते हैं। तो जैसी याद वैसे अनुभव होते हैं। और इस प्रकार अनेक प्रकार की यादों से और उन यादों के अनुभवों से हम सबका जीवन भरा हुआ है। अब तक के जीवन में व्यक्ति की याद, वस्तु की याद, घटनाओं की याद, उन यादों के अनुभवों का सार क्या निकलता है? अब तो हमें सत्य ज्ञान भी मिला है। अब तक के जीवन में उन अनुभवों का सार अगर हम निकालें तो सबके सामने यही सार निकलता है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु की याद आखिरकार दुख देने वाली ही है। कोई व्यक्ति की याद है, मान लो जो हमें बहुत सुख देते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, प्यार करते हैं, पर वो व्यक्ति कहीं दूर चला गया, उनसे मेरे संबंध टूट गए, या वो व्यक्ति नष्ट हो गई, अब उनकी ही याद कैसी अनुभव होगी? दुख देने वाली अनुभव होगी, अभाव, विरह, अकेलापन के अनुभव कराने वाली होगी। कोई वस्तु है, बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है, किसी ने मुझे गिफ्ट दी है, उस चीज को देखकर मैं खुश होती, पर वो चीज टूट गई, फूट गई, गुम हो गई, किसी ने चुरा ली, अब उसकी ही याद दुख देने वाली महसूस होती है ना। बार बार अफसोस करेंगे कि अरे ये बहुत अच्छा था, चला गया, बहुत अच्छा था, गुम हो गया, टूट गया। तो हम सार रूप में क्या कह सकते कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु की याद आखिरकार दुख देने वाली। हम कह सकते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, इन आंखों से तो क्या दिखाई देता है? भौतिक चीजें, शरीर ही दिखाई देते हैं ना, भौतिक जगत दिखाई देता है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो परिवर्तनशील और नाशवंत है, इसलिए आखिर उसकी याद दुख का ही अनुभव कराते हैं। इसलिए हरेक को अपने जीवन में अनुभव भी होगा, कईयों के जीवन का अनुभव भी देखा होगा कि जब कोई साथ नहीं रहता है, कोई विकट परिस्थिति आती है, धोखा खाते हैं, असहाय हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, उस समय किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, तब कहते हैं कि अब हे भगवान, आप ही मेरे आधार है। तो दुखी हो जाएं, धोखा खाएं, निराश हो जाएं, फिर भगवान को आधार बनाएं, इससे तो क्यों नहीं पहले से ही भगवान को ही अपने जीवन का आधार बना ले। और ये हम सबने किया है, भल हम इस दुनिया में रहते हैं, लौकिक या अलौकिक, सेवा कारोबार करते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, पर अंदर ये सत्य स्पष्ट है कि अविनाशी सदा काल का सुखदाता एक बाबा है। ये समझ में आ गया है ना सबको, और स्वीकार हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें उस समय तो भक्ति में भगवान का परिचय भी नहीं था, सिर्फ मान्यता और भावना थी, है ना, तो भी उसके आधार से जीते। अब तो स्वयं भगवान हमें मिले, उनका सत्य ज्ञान मिला। रोज हम उनके ब्रह्मा मुख से उच्चार किए महावाक्य सुनते हैं। क्यों नहीं हम बाबा को ही अपने जीवन का आधार बना दें, उससे ही अपना सर्वस्व समझें। जब हर संबंध से, हर रीति से बाबा को ही मैंने अपना बनाया, तो मुझे हर बात में, हर समय, हर परिस्थिति में, हर आवश्यकता में कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा, है ना। बुद्धि बाबा से पहले बात करेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल हम कर्म क्षेत्र में हैं, तो प्रैक्टिकल जो कर्म करना है, प्रयास करना है दुख को दूर करने या सुख को पाने, वो तो मुझे ही करना है। हम क्या करते हैं? बाबा को कहते हैं, फिर खुद कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकल तो हमें ही करना है ना। तो बाबा का जब सत्य ज्ञान मिला, उस समय हमारी बुद्धि, हम तो बहुत छोटे थे, 14 साल के थे, 16 साल की आयु पर समर्पित हुए, पर हमारी बुद्धि में यही था कि कोई भी देहधारी क्या सदा और संपूर्ण सुख दे सकता है, मेरा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शरीर धारण करेगा वो तो अनेक संबंधों में बंधेगा ना। वो कुछ परसेंट माँ बाप का, कुछ परसेंट भाई बहनों का, कुछ परसेंट बीबी बच्चों का, कुछ परसेंट मित्रों का, कामकाज का। सदा कोई भी देहधारी सदा हमारे साथ रह सकता है? रह सकते नहीं। हर क्षण कौन साथी बन सकता? कौन बन सकता? निराकार ही बन सकता। और लोग क्या मानते हैं कि निराकार कैसे मदद करेगा, है ना? बाबा के बच्चों को भी कई बार संकल्प चलते हैं, कि निराकार कैसे मदद करेगा, पर निराकार ही सदा साथ रह सकता है और निराकार ही संपूर्ण मदद कर सकता है। बाकी जो आत्माएं हैं वो तो यथा बुद्धि यथा शक्ति मदद करेंगे। पूर्ण शक्ति से सदा कोई भी आत्मा नहीं मदद कर सकती, है ना? तो आत्मा ने निर्णय किया कि बस सत्य बाबा है, अविनाशी साथी बाबा है, संपूर्ण प्राप्ति कराने वाला, है ना? क्योंकि आत्मा उससे मिलेगा तो वो तो आत्मा को बांधेगी, है ना? कुछ मुफ्त में मिलता है इस दुनिया? मिलता है नहीं, हिसाब बनते ही है, वो चुकाने ही पड़ते, क्योंकि आत्मा का आत्मा से लेन देन तो आत्मा को बांधती है ना। बाबा हमें भरपूर भी करता और मुक्त भी रखता है। तो लक्ष्य बना लिया कि बस बाबा का ही बनना है, बाबा को ही जीवन समर्पित करना है। हम निर्बंधन थे, कुमारी थे, आप सबका डबल रोल है, निमित्त बनकर निभाना है, पर सत्य को याद रखना है। तो आप अनुभव करेंगे कि जब अंदर से जिगरी ये रियलाइजेशन है महसूस करते हैं कि बाबा क्या है, क्यों याद करना है, जब दिल से स्वीकार करते हैं कि बाबा ही मेरा सब कुछ, आत्मा का अविनाशी सर्व संबंधी तो बाबा है, हम सब तो सह पार्टधारी है, इस सीन में हम इकट्ठे हुए हैं, सीन बदलेगा, रोल बदलेगा, ड्रेस बदलेगा, है ना? अविनाशी साथी तो बाबा ही है। जब ये अंदर से फैसला है और एक्सेप्टेंस है, स्वीकार है, फिर याद भूल नहीं सकते, है ना? फिर बाबा की याद सदा रहेगी। भगवान को याद तो भक्ति में भी करते थे, लगन तो थी, पर सत्य नहीं जानते थे, इसलिए कोई किसको याद करता था, कोई किसको याद करता। शिवरात्रि आएंगे तो शिव को याद करेंगे, रामनवमी आएगी तो राम को याद करेंगे, क्योंकि सत्य पता नहीं था, पर अब हमें सत्य पता है। इसलिए दादी जानकी जी यही मूल दो चीजें कहती थी ना बार बार, कौन सी बातें याद है, मैं कौन, मेरा कौन, ये रियलाइज करो बार बार, यही बेसिक पुरुषार्थ। हम कौन है? हमने तो लौकिक परिचय से खुद को लिमिट कर दिया था ना, पर बाबा ने तो शरीर से ऊपर उठा दिए, उस बेहद की दृष्टि से और आदि मध्यान्ह का ज्ञान दे दिया। तो हम अपनी ऊंचाई को समझ गए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। हम तो बहुतों को मेरा समझते थे, फिर दुखी भी होते थे, धोखा भी खाते थे, पर उसी में फंसे रहते थे, निकलते नहीं थे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था ना कि हम इससे अलग आत्मा है। अब बाबा का सत्य ज्ञान मिला तो आत्मा को पक्का हो गया कि बस बाबा की याद में ये कर्म करना है, संबंध निभाने हैं, दुनियादारी करनी है। और जब स्व में स्थित है, बाबा याद है, तो डिसीजन आता है, क्लियर हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दादी बताती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है ना। हमें किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। जब हम कौन, हमारा कौन पता है, तो अपने आप निर्णय आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो नियम संयम मर्यादा अपने आप जीवन में आ जाती है, हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, सिंपल है, पर जीवन भर बहुत गहराई से उसको महसूस करते रहते हैं तो बाबा कहते हैं याद भूलेगी नहीं। याद नेचुरल बाबा की रहे, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करनी पड़ती है मीन्स फैसला पावरफुल नहीं है। फिर न मन से भटकना रहता है न तन से भटकना रहता है। अपने आप बार बार हम अपना बुद्धि योग बाबा से लगा रहता है। तो ये फर्स्ट हमारे जीवन का स्टेप है कि ज्ञान पाते ही निश्चय बुद्धि बनते ही, गहराई से महसूस करते ही बाबा की याद में हम रहने लगते हैं। न तन से भटकना है, भक्ति में तो बहुत भटके ना, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु जी से दूसरे गुरु में, देहधारियों में भी कितना भटके। ये प्यार करेगा, ये साथ देगा, अब न मन से भटकना न तन से भटकना। फिर अपने आप को समझाना है और बाबा की याद में लगाना है। अपने आप को समझाओ, क्योंकि आत्मा को अनेक जन्मों से अनेक रस लिए हैं, तेरी मेरी इसकी उसकी आज की कल की दुनिया भर की, खाने की पीने की सुनने की पहनने की, है ना, पता नहीं कितने रस लिए हैं, इंद्रिय रस। अब एक के रस में रहने में, हाँ, आत्मा को परेशानी तो होती है ना, मन बुद्धि को, क्योंकि अब तक तो बहुत रस खाया, अब एक ही भोजन कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ याद के रस में, तो मन भटकेगा, पर फिर खुद को याद करो कि नहीं बाबा माना बाबा। क्यों बाबा ने 84 जन्मों का इतिहास बताया? बाबा कहते हैं महसूस करो, द्वापर युग से आधा कल्प अनेक देहधारियों को याद किया, क्या प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई? हाँ बताओ बताओ, क्या प्राप्ति हुई? उतरती कला ही हुई, उतरती कला ही हुई ना। पतित बने, तमो प्रधान बने, जो सुख शांति आनंद प्रेम था वो भी गवाया। बाबा कहते हैं ना, ताज गया तख्त भी गया। तो बाबा ये 63 जन्मों का अनुभव सामने रखने के लिए कहते हैं कि 63 जन्मों का अनुभव है देहधारियों को, दुनिया को याद करने से क्या मिला? और अब जब स्वयं बाबा आए हैं दुखों से छुड़ाने, सदा के लिए सुखी बनाने, तो मुझे बुद्धि से भी नहीं भटकना है, खुद खुद से बात करो। साइलेंस में जब भी बाबा के सामने बैठते हैं, खुद खुद को समझाओ कि बाबा की याद ही कल्याणकारी, वो ही पावन बनाने वाली, शक्ति भरने वाली। तो जितना बाबा से जिगरी जीवन जोड़ेंगे, जीवन के सर्व संबंध जोड़ेंगे, जितना गहराई से महसूस करेंगे, जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, जितना बुद्धि सद्ज्ञान से भरपूर होती जाएगी, मनन चिंतन में ज्ञान आएगा, फिर मन का युद्ध खत्म हो जाता है। फिर बाबा याद रहेगा, हर बात में ज्ञान याद रहेगा। परिस्थिति आई नहीं और ज्ञान याद आएगा कि कैसे इसको पार करना। हम कभी मुंझेंगे नहीं, द्विधा नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, ये करे वो करे क्या करे, दुविधा है मीन्स ये सत्य समझा नहीं है, स्वीकार नहीं किया है, और इच्छाएं है इसलिए युद्ध है मन में। जब बुद्धि समर्पण है बाबा के आगे, सत्य के आगे, आप हमें कोई व्यक्ति के आगे तो बुद्धि समर्पण करनी नहीं, बेस सत्य को पकड़ना है, बाप को पकड़ना है। तो अपने आप मन शांत स्थिर एकाग्र होने लगेगा, हमें उस याद में सुख लगेगा, आनंद आएगा। याद में बैठते हैं पर बुद्धि को समेट नहीं पाते हैं, इसलिए योग में बैठ के भी कामकाज ये वो फलाना सब वही याद करते रहते, क्योंकि बुद्धि को सब बातों से निकाल नहीं पाते। क्यों निकाल नहीं पाते हैं? क्योंकि सारा दिन अटैच होके कारोबार किया, सारा दिन जो भी कारोबार किया ना वो उसी में कॉन्शियस होकर मय होकर किया, आसक्त होके किया, डिटैच न्यारा होकर नहीं गया। इसलिए योगी जीवन बनाने का लक्ष्य है तो दिनचर्या सात्विक चाहिए, अंतर्मुखी चाहिए। क्लास में आते हैं, योग में बैठते हैं, तब योग शुरू नहीं होता है। योग के लिए मनोस्थिति तो सुबह उठते हैं तब से लेकर जिस प्रकार के विचारों में रहते हैं, कर्मों में रहते हैं, उसके आधार पर तैयार होती जाते। अगर दिन भर बहिर्मुख है बॉडी कॉन्शियस है, ज्यादा सांसारिक है, लौकिक है, तो जब योग में बैठेंगे बुद्धि समेट नहीं सकेंगे। बुद्धि समेट नहीं सके, इसलिए बाबा कहते बार बार अपने को डिटैच करते रहो। बाबा मैं निमित्त बनकर पार्ट प्ले कर रही हूं, बाबा आपकी याद में नौकरी पर जा रहा हूं, बाबा ये आपका बिजनेस है, मैं आपके तरफ से निमित्त हूं, ये घर आपका है, ये बच्चे आत्माएं आपकी, मैं निमित्त हूं पालना के। अंदर से अपने को डिटैच करना है। हम भी अपने आप को डिटैच करते हैं, बल सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं कि बाबा का है, हम निमित्त बने। तो दिनचर्या जितनी सात्विक अंतर्मुखी, विशेष याद में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, बहुत जल्दी मन को समेट सकेंगे। और मन समेटेंगे तो याद का आनंद आएगा। जीवन को समेटना है। करते हैं ना दीपावली में सफाई करते हैं ना, सारा साल तो जो भी चीजें आती है घर में डालते रहते रखते रहते, फिर दीपावली में सफाई करते हैं तो क्या करते, अनावश्यक निकाल देते, क्योंकि जब चीज आती काम आएगी करके हम भरते रहते हैं घर में, फिर देखते हैं 2-3 साल से कोई उपयोग में नहीं आई है, फिर दे देते हैं किसी को, अनावश्यक निकाल देते हैं और जो आवश्यक है वो साफ सुफ करके व्यवस्थित रखते हैं। ये इसके लिए भी करना है, अंदर भी करना है। बहुत बातें हमने मन बुद्धि में भरी है, कोई दुख की, कोई अपमान की, कोई अप्राप्ति की, कोई अन्याय की, कोई पक्षपात की, कोई इच्छाओं की, है ना, अंदर कितना कुछ भरा है। हमें शांति से बैठकर सफाई करनी है, महसूस करना है। अब इसकी ये बातें मन में रखने से कोई फायदा नहीं, अज्ञान काल में तो बहुत भरते थे ना, बरसों के बाद भी याद रहता था उसने मेरा अपमान किया था, देख लूंगी, मौका ढूंढते रहेंगे, बार बार याद करके दुखी होते। चलो हिसाब किताब चुक तू हुआ, अब समझ गए ना कि हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्म का फल अपने आप मिलना ही है हर एक को। चलो हमारा कोई हिसाब होगा जो उसने ऐसा किया या उसने गलत किया है, तो हमें जगाया कि भाई हम साक्षी हो जाए, न्यारे हो जाए, हम बहुत फंसे हुए थे उसमें, तो अपने को समेटो, जो वेस्ट है वो निकालो। मन साफ करना, हम अज्ञान काल में ये खाते थे, वो खाते थे, ये पहनते थे, सब खत्म करना है। अब क्या करना है, बार बार वही पक्का करना है, अब क्या करना है, भगवान क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है ना। पहले तो यही सोचते थे ना, लोग क्या कहेंगे, तो सत्य पकड़ते ही नहीं थे। अब भगवान आए हैं, ये सत्य हम जानते हैं, इसलिए वो क्या कहता है, मुझे क्या करना, बस यही सोचना है। भगवान तो जो कुछ कहेगा सत्य ही कहेगा ना, कल्याणकारी ही कहेगा, ये निश्चय वही करना है मुझे। तो मन को भी समेटो, वेस्ट निकालो, तो प्रैक्टिकल जीवन भी समेट सके। बहुत अनावश्यक प्रवृत्ति करते हैं, बातों में जाते हैं, अनावश्यक कई चीजें सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकल भी शॉर्ट आउट करो, वेस्ट नहीं करना है। तो जो करना है उस पर एकाग्र हो सके। वो शॉर्ट आउट नहीं करते हैं, समेटते नहीं हैं, वेस्ट निकालते नहीं हैं, तो फिर थकते हैं, ये भी करे वो भी करे क्या क्या करे, ऐसे सोचते। बाबा भी कहता, लौकिक भी कहता, नौकरी में इधर बस थक जाते हैं, कहां टाइम दे, कहां धन लगाए, कहां मन लगाए, मुंझते हैं। परंतु नहीं, लक्ष्य पक्का है तो क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हम सब कुछ पकड़ के रखते थे ना, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे देखना ही पड़ेगा, है ना। अब कम करते जाते हैं। हम लोग जब समर्पित हुए, हमारे पिताजी को तो बहुत उमंग था कि कब मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, क्योंकि उनको तो पक्का निश्चय था। तो हमारा अपना फैसला जब हुआ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बाद, तो पापा को तो बहुत खुशी हुई। जब लौकिक वालों को पता चला तो सब कहने लगे, क्योंकि हम ये नडियाद आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवा पाटीदार रहे, तो उसमें तो बहुत शादियों में खर्च करते, तो सब बातें करने लगे कि शादी का खर्च करना पड़े इसलिए बेटियों को साधु बना दी। पर हमारे पिताजी तो बहुत पक्के निश्चय बुद्धि थे, इसलिए उनको इन बातों का कोई असर नहीं। मैं समझती हूं कि 15 साल के बाद, क्योंकि जब से हम ज्ञान में आए, पिताजी हमें वतन में गांव में ले ही नहीं जाते। छुट्टियां हैं माना सेंटर में जाना है या मधुबन जाना है। तो 15 साल के बाद दादा ने शरीर छोड़ा, तो हम गए, पापा को हुआ कि ये मौका है ज्ञान देने का, तो उन्होंने भाषण रखा। जब हम गए देखा तो लोगों को हुआ, वही मित्र संबंधी कहने लगे कि तुम पार हो गए, हम तो डूब गए। तो ऐसा है दुनिया, हमें अपने निर्णय में दृढ़ रहना होता है। तो अपने आप हमारे पास फिर बाबा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, सेवा के लिए टाइम ही टाइम है, फिर कोई खींचाता नहीं। तो खुद को महसूस करना है कि रोज की दिनचर्या से, जीवन से व्यर्थ को निकालना है। फिर याद में एकाग्रता आएगी, तो योग कहते हैं, फिर बाबा से योग लग जाए, फिर बुद्धि भटकती नहीं, फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे, सेकंड में अपने आप को समेट सकेंगे, डिटैच हो सकेंगे यहां से, तो बाबा से अटैच हो सकेंगे। यहां से निकल नहीं पाते हैं इसलिए याद का आनंद नहीं आता। फिर आप अपने आप बाबा की याद में ही सब कुछ करने लगे, क्योंकि योग लग गया, लगन लग गई। तो प्रैक्टिकल योगी जीवन बनता जाता है। योग में जो सुख और आनंद मिलता है, जब वो आप प्राप्त कर लेते हैं, फिर और बातों का कोई इच्छाएं नहीं रहती। मान मिला, शान मिला, चांस नहीं मिला, ये कुछ भी बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति हम अंदर करते हैं। बाबा कहते ना कि अतिंद्रिय सुख। आप मुरली में देखो कितना बाबा कहते, तुमको खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वो स्टेज थी, वो महसूस कर, हमें क्यों मेहनत लगती, क्यों युद्ध लगता, क्यों थकान लगती। बाबा कहते हैं लगन की परसेंटेज बढ़ाओ तो विघ्न का अनुभव भी नहीं होगा। लगन की अग्नि में विघ्न भस्म हो जाएंगे। भक्ति में भी बताते हैं ना, प्रहलाद का गायन किसका गायन, हम बच्चों का ही तो गायन है। मीरा का देखो, जो भी बड़े बड़े भक्त हुए उनको तो सत्य पता भी नहीं था, लगन थी ना। हमें तो सत्य मिला है, और जब लगन लग जाती है कोई मुश्किल नहीं, फिर हम निरंतर पुरुषार्थ कर सकते हैं, निरंतर बाबा के बन सकते हैं। फिर ऊपर नीचे होना, हिलना, ढीला कमजोर हो जाना, ये होगा ही नहीं। आप अपने बल से, ज्ञान बल, योग बल, निश्चय बल, समर्पण बल के आधार पर चल सके। बाबा के तो स्थिरता आएगी तो एकाग्रता आएगी। और अब समय तपस्या का है। तपस्या माना दृढ़ता से करना, दृढ़ता। करते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत करते, ऐसे नहीं। लक्ष्य, हम तपस्वी हैं, ठीक है, घर ग्रस्त में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पर हम हैं योगी, हम योगी हैं, तपस्वी हैं। क्या क्या टाइटल बाबा देता है, तुम बेहद के सन्यासी हो, बेहद के वैरागी हो। आज भी बाबा ने कहा इस कब्रस्तन से दिल नहीं लगाने, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने, दिल उठ जाए, लंगर उठ जाना चाहिए। तो अनुभव होगा जीवन पार हो रहा है, हम सतयुगी किनारे पहुंच रहे हैं, ये महसूस हो। बाहर नहीं देखना है, स्वर्ग आएगा कुछ दिखता नहीं है, बाहर नहीं देखना, خود میں محسوستا ہوگی کہ میں اس پرانی دنیا میں پرانے شریر میں رہتے ہوئے میں آتما ستیوگی بن رہی ستو پردھان بن رہی, یہ خود کو محسوس. وہ کہتا ہے نا ساری رات وہ نیا چلاتا رہا, چپو چلاتا رہا, صبح ہوئی اجالا ہونے لگا پھر بھی کنارہ نظر نہیں آیا. جب پورا اجالا ہوا دیکھا تو کیا تھا, کیا بھول تھی, لنگر اٹھایا ہی نہیں تھا. کنارے پر باندھتے ہیں نا ناؤ کو, وہ لنگر اٹھایا ہی نہیں تھا. ہم بھی سوچتے ہیں, ہم روز سینٹر جاتے ہیں آتے ہیں, روز سیوا کرتے ہیں, روز سہیوگ کرتے ہیں, ہماری استھتی کیوں نہیں بنتی, پر لنگر نہیں اٹھا ہے. چیک کرو اپنے آپ کو, ہے نا, دیہت کا ویراگیہ جو بابا کہتے ہیں, مینس ایک بابا بس, تو لگن میں مگن, لو میں لین, وہ تپسیا ہے, دڑھتا. دڑھتا سے اپنے آپ کو بنانا ہے کہ مجھے کیا لکش بابا نے دیا, کیسا بننا ہے ہمیں. ہاں کماریاں بتاؤ, کون کون کماریاں ہیں, ہاتھ اوپر کرو. اچھا بہت سندر, بتاؤ کیا لکش ہے. پریکٹیکل سنگم یوگ میں کیا بننا ہے, باپ سمان فرشتہ بننا. بابا کہتا ہے نا باپ سمان, بھائی بہنوں بولو, سمپن اور سمپورن بننا ہے. تھوڑے میں راضی تو نہیں نا, ہاں کہ پویتر بن گئے, یوگی بن گئے, بس بہت ہو گیا. برہما باپ سمان سمپورن بننا ہے, سمپن بننا ہے, پوری پراپتی کر دی. ہم ہی کہتے تھے نا بھکتی میں کہ بھگوان جب آتے ہیں دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں, ہاں کیسا دیتے ہیں بھگوان, چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں. تو یہ بے حد کی پراپتی کراتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے بابا, ایسے تو نہیں ہے نا. تو لکش رکھنا ہے, مجھے پوری پراپتی کرنی, مجھے بننا ہے. لکش لیا ہے, مارگ ملا ہے, ساتھی ملا ہے, گائیڈ ملا ہے, تو کم کیوں پراپت کریں. تو سادھنا چلتی ہے, تو ایکاگرتا دڑھتا کے ساتھ مگن ہونے کا پرشارتھ ہم کریں. اس حساب سے جب سب باتوں سے فارغ ہو کر آپ آئے ہیں, جب بھی بابا کی یاد میں بیٹھتے ہیں, کلاس میں بیٹھتے ہیں, یہاں اپنے آپ سے بات کریں, خود بابا سے دڑھتا کریے, لکش بنائیے. بابا کہتے ہیں ہمت بچوں کی مدد بابا کی، ہمیشہ مدد ملتی. تب کہتے ہیں نا بھائی اس کو پانے کے لیے میں نے تپ کیا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے نا. جب لمبا سمے لگاتار دڑھتا اور ایکاگرتا سے پرشارتھ کرتے ہیں تو اسے تپسیا کہتے ہیں. لگاتار کنٹینیوٹی چاہیے، بار بار من بدلے، ڈھیلا ہو، بنے بگڑے تو بابا کہتے ہیں وہ طاقت نہیں بنتی. نرنترتا چاہیے، دڑھتا چاہیے، ایکاگرتا چاہیے. تو ہم کتنے بھی لوگوں کے بیچ جیئیں گے، کاروبار کریں گے، آتماؤں سے ملیں گے، پھر بھی نیارے اور پیارے رہ سکتے ہیں، اپنے آپ میں ایکاگر رہ سکتے ہیں نا. پریکٹیکل بابا نے، مما نے، دادیوں نے ہے نا کر کے دکھایا، ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا. اور ایسے میں تو کہوں گی ہزاروں بابا کے بچے بھی ہیں، آپ میں بھی ہوں گے جو دن رات اسی لگن سے چل رہے ہیں. تو ہم اوشیہ بابا کی آشا کو پورا کریں گے، کریں گے ہاں، ہاتھ اوپر کرو، کریں گے تو کہ بابا کی، کیونکہ ہمیں اس کی تو آشائیں پوری کرنی ہے اور کس کی کرنی ہاں. اور اس میں ہمارا اپنا ہی کلیان ہے. تو ہم ایک گھنٹہ بہت اچھی طرح پیار سے ایکاگر ہو کر ابھیاس کریں گے، یاد کا ابھیاس کریں گے. دو منٹ کے لیے سبھی کھڑے ہو جائیں، تھوڑا شریر ٹھیک کر لیجئے، کب سے بیٹھے ہیں. آتا ہے نا ایکسرسائز کرنا، کریے ہر ایک، کمر ٹھیک کریے، ہاتھ ٹھیک کریے، پاؤں ٹھیک کریے ہاں. ओम शांति. स्वयं में स्थित हो जाए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं. شریر میں رہتے ہوئے میں شریر سے الگ محسوس کریں خود کو دیہ سے अलग। शरीर तो मिट्टी है, तत्वों से बना है। मैं चैतन्य हूँ, ज्योति बिंदु, शक्ति पुंज। बार बार महसूस करें। शरीर रूपी गुफा के बीच मस्तक के आसन पर विराजमान मैं जगमगाती चैतन्य ज्योति योगी आत्मा।
जैसे ही मैं देह भान से न्यारी होती हूँ, मैं इजी और लाइट बनती जाती हूँ। बिल्कुल सहज प्रकाश स्वरूप अब मैं लाइट के आकार में पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अब यह हाथ भी प्रकाश के हैं। पांव भी प्रकाश के हैं। ये आंखें रोशनी के बल्ब हैं। मैं स्वयं मस्तक बीच चमकती चैतन्य मणि हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व प्रकाशमय है।
मैं ज्योति बिंदु, परम ज्योति, प्यारे बाबा के सानिध्य में अखंड ज्योति ब्रह्मलोक में लाइट माइट ले रही हूँ। मेरा अपना शुद्ध आत्मस्वरूप मेरा प्यारा स्वीट साइलेंस होम मेरा प्यारा बाबा सर्वशक्तिमान बाबा की संतान, लाइट स्वरूप, माइत स्वरूप। बाबा से लाइट माइट लेकर अब अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ चमकीले वतन में, चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण कर मैं वतन से ही विश्व की सेवा पर लाइट हाउस माइट हाउस बन विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति की खुशी की किरणें देना
अब मैं डबल लाइट फरिश्ता बन परम ज्योति बिंदु बाबा की याद में रहते इस साकार जगत में मनसा महादानी बन सेवा पर उपस्थित विश्व की सभी आत्माओं प्रकृति जगत के प्रति वाइब्रेशंस दे रही है।